તો અમને લાભ આપશો એવી આપણે ફરી ફરીને વિનંતી કરીએ છીએ. પૂજ્ય ગુરુદેવના જે છ વસ્તુ જે કાલે એમને જે સમજાવી છે એ એવી અદભુત છે કે કાલે એક સ્વાધ્યાય અક્ષયભાઈ ને ત્યાં ગયા હતા અને ત્યાં બધાને પૂછ્યું વારાવર્તી અને એવું સરસ રીતે એમને આપણને કાલે જે સમજાવ્યું છે એ માટે આપણને જે ગુરુદેવને જે રીતે એમને યાદ કર્યા અને ઉપરાંત જે એમને પોતાની બનાવેલી ભક્તિ પણ જે ત્રણ દિવસ સુધી ત્રણ ચાર વખત એ ભક્તિ માટે પણ આપણે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને તમે ચોક્કસ અવારનવાર આવશો, માત્ર તમે જેમ કહ્યું આ મંદિરની શોભા જોવા માટેની, મંદિર તો આખા તમે કહ્યું કે ભારત વર્ષમાં આની ચર્ચા થઈ રહી છે, પણ હવે આ જે ગુરુદેવનું જે તત્વ જે આપે છે, જે સમજ્યું છે, વિરસ્યું છે, એ તત્વ અમારું ઘૂંટણ થાય અને એમાં તમારો ખૂબ સહયોગ મળે એવી અમે ફરી ફરીને તમારી વિનંતી કરીએ છીએ. અમે ખાસ અક્ષયભાઈને કહું, ઇતુભાઈ પણ આવે અહીંયા, અક્ષયભાઈ, ઇતુભાઈ અને જે કોઈ ટ્રસ્ટી, આપણા જે ટ્રસ્ટી જે છે એ બધા પણ અહીંયા આવી જાય. અને આપણે પહેલા રાજેન્દ્ર કુમારજીનું બહુમાન કરીએ છીએ, એમને આપણે અક્ષયભાઈ અને ઇતુભાઈના હાથથી. સમીરભાઈ, સમીરભાઈ આમાં આ બાજુ, રોહિતભાઈ નથી નથી,
પંડિતજી
આવો. ખૂબ ખૂબ અમે આપણા, અને આજે પણ ભક્તિ એક એક લીજો. જય હો પ્રસન્ન મૂર્તિ ધન્યવતા પૂજ્ય ભગવતી માતાનો જય હો. હવે આપણે મનોજભાઈ,
એમનો આભાર.
મનોજભાઈ આપ ખાસ આવો. મનોજભાઈએ જે રોજની જે પૂજા કરાવી છે અને એ પૂજાની સાથે સાથે એમને જે ભક્તિ જે રીતે એમને રજૂઆત કરી છે એ પણ આપણા માટે જે અવિસ્મરણીય છે. ખૂબ સુંદર રીતે એમને ભક્તિ કરાવી છે અને પૂજા પણ, તો એના માટે આપણે એમનો પણ આભાર માનીએ છીએ મનોજભાઈનો. અને મનોજભાઈ પણ આપ પણ અમને લાભ આપતા રહેશો એવી આપણે ખાસ વિનંતી છે. હવે કાલનો પ્રોગ્રામ તમને ઇન્દ્રવર્ધનભાઈ કે છે, કાલે આપણા માટે બે અગત્યના દિવસો છે. એક તો કૃપાળુ દેવની 150મી જન્મજયંતિ, બોલો કૃપાળુ દેવનો
જય હો.
અને સમીસારજી માટે આપણે કાલ આવતીકાલનો જે દિવસ છે
સવારે 6:45 થી 8 જીનેન્દ્ર ઓફિસ, 8:30 સોરી 8 જીનેન્દ્ર ઓફિસે તથા નંદીશ્વર વિદ્યાની પૂજા, 8:30 થી 9:30 પૂજ્ય ગુરુદેવસિંહ સીડી પ્રવચન, 9:30 થી 10 શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય શ્રી રાજેન્દ્ર કુમારજી દ્વારા, નહીં છે કીધું ચેન્જ કર્યું, અને 10 થી 10:30 શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય પ્રકાશભાઈ કલકત્તા વાળા દ્વારા. એ પ્રમાણે આવતીકાલ સવારનો કાર્યક્રમ છે અને 10:30 પછી પરમ કૃપાળુ દેવના ચિત્રપટ સમક્ષ જે એમનો 150મી જન્મજયંતિનો દિવસ છે ત્યાં આપણે એમના વધામણા અને ભક્તિ વગેરેનો કાર્યક્રમ રહેશે. બીજું આવતીકાલે સમયસાજીની ગુજરાતી અનુવાદની પૂર્ણાહુતિનો દિવસ છે, તો આપણે કૃપાળુદેવની સાથે સમયસા જીનવાણી માતાના પણ વધામણા સાથે કરશું. બરાબર પરમાગમ સમયસા જીનવાણી માતનો જય હો. આવતીકાલે રાત્રિનો કાર્યક્રમ રાત્રે 7:15 થી 8:15, 7:15 થી 8:15 જીનેન્દ્ર ભક્તિ તથા આરતી, 7:45 થી 8 પૂજ્ય બેનસિંહની વિડીયો તત્વ ચર્ચા અને 8:00 થી 9 શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય પ્રકાશભાઈ કલકત્તા વાળા દ્વારા. એ પ્રમાણે પ્રકાશભાઈનો અડધો કલાકનો સ્વાધ્યાય આવતીકાલે સવારે રહેશે અને રાત્રે 1 કલાક એમનો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય રહેશે. પંડિતજીનું આવતીકાલે સવારે એમનું છેલ્લું સ્વાધ્યાય આપણા માટે રહેશે. તો એ પ્રમાણે આવતીકાલનો કાર્યક્રમ છે, દરેક મુમુક્ષુ ભાઈ બહેનોએ લાભ લેવા વિનંતી છે. જય જીનેન્દ્ર.
કાલે બધા સવાર સાંજ એકે દિવસ ખાલી આપણે આપણે બરાબર બધાની હાજરી રહે એવી ફરીથી વિનંતી કરું છું. કાલનો આપણો 150મો કૃપાળુદેવનો એટલે આપણા માટે અગત્યનો એ રીતે પણ છે અને ઉપરાંત સમય સારજીની રીતે ઉપરાંત બંને પંડિતોનો આપણે લાભ મળવાનો છે. એટલે કાલ સાંજે આમાંથી કોઈ પણ ગેરહાજર ન રહે એવી હું ફરી ફરીને વિનંતી કરું છું.
પૂજાના ત્રણ નામ છે, એક પ્રીતિ અતુલભાઈ શાહ હસ્તે શાંતાબેન, એક અર્ષા સંદીપ વારિયા અને બે રજનીકાંત આરસા હસ્તે હસ્તાબેન ટીમ્બળિયા. બાકીના નામ આવતીકાલે જાહેર કરવામાં આવશે. આઈએ પંડિતજી સ્વાધ્યાય કે લીએ જીનવાની કી આપ સ્તુતિ બોલીએ.
સાવધાન સ્યાદ્વાદ નય શટ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ઔર પ્રમાણ કા જળ કરમ ચેતન બંધ કા હરુ કરમ કે અવસાન કા કહ કર સ્વરૂપ યથાર્થ જગ કા જો કિયા ઉપકાર હૈ ઉસકે લિયે ચિન્નવાણી માં કો વનંદના શત બાર હૈ વનંદના શત બાર હૈ. બોલે દ્વાદશાંગમય જિનવાણી માતનો જય.
ચાલુ કરે રમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો વાયરીયાણં નમો વજ્જાયાણં નમો લોયે સવિસાહુણં મંગલં ભગવાન વીરો મંગલં ગૌતમોગણી મંગલં કુંદકુંદાર્યો જૈનિ ધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વે કલ્યાણકારકમ પ્રધાનમ સર્વે ધર્માણા જય જયતુ શાસનમ જૈનમ જયતુ શાસનમ નમઃ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યાચકાસુતે ચિસ્વભાવાય ભાવાય સર્વે ભાવાંતરચ્છદે વંદિત્તુ સવ્યસિદ્ધે ધ્રવચલમણોવવં ગદિં પત્તે મોચ્છામિ સમય પાહુળ મણમો સુદ કેવલીવળી. સમયસાર જી ગ્રંથાધિરાજ 31 નંબર કી ગાથા પઢેંગે. જો ઇન્દિયે જણતા લાળ સહાબાધિયમ મુણદિયાદમ તમ ખલુ જિદિંદિયમ તે ભણંતિ જેડિચ્છદાસાહુ કર ઇન્દ્રિજય જ્ઞાને સ્વભાવેરુ અધિક જાને આત્મિકો નિશ્ચય વિશે સ્થિત સાધુ જન આસે જીતેન્દ્રી ઉની કો. જો ઇન્દ્રિયો કો જીત કર જ્ઞાન સ્વભાવ કે દ્વારા અધિક આત્મા કો જાનતા હૈ ઉસી નિશ્ચયને મે સ્થિત સાધુ પરમેષ્ઠી હૈ વી જીતેન્દ્રી કહેતે હૈ. યાની હમ જૈન હૈ तो बाकी सब अजय हैं। हम जीव हैं तो बाकी सब अजीव हैं। हम अतीन्द्रिय हैं तो बाकी सब इंद्रियां। हमने जिसे इंद्रिय माना था कि पांच इंद्रियां होती होंगी, भगवान कहते हैं आत्मा को छोड़कर पूरा विश्व इंद्रिय। संकर दोष का परिहार करो। आज तो गुरुदेव ने कितना खुलासा किया, कैसे जीव पर की स्तुति करता रहता। बहुत अच्छा लगता है, पिकनिक में गई थी, आनंद आ गया, तो उसे आनंद जो आत्मा का स्वभाव है वहां से न दिख करके जहां नहीं है वहां दिखता है। ये आत्मा का अपमान और इसका परिहार कराने के लिए ये स्तुति बताई कि तुझे ज्ञान ज्ञान स्वभाव से होता है तो कहां कहां से नहीं होता। तो तीन प्रकार की इंद्रियां बताई, द्रव्य इंद्रियों से नहीं होता, भाव इंद्रियों से नहीं होता और भाव इंद्रिय के विषयों से नहीं होता। तो हम ये पूछ रहे कि भाव इंद्रियों से क्यों नहीं होता, द्रव्य इंद्रियों से तो नहीं होता, ये तो जड़ है, पर भाव इंद्रिय तो ज्ञान की पर्याय है, इससे क्यों ज्ञान नहीं होता। भाव इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता यानी सम्यक ज्ञान नहीं होता, उससे भी आत्मा नहीं दिखती। जब तक आप अपने को छिपसम ज्ञान से देखोगे तब तक आत्म दर्शन नहीं होंगे। आपके प्रगट ज्ञान तो है, डॉक्टर हो आप, वकील हो, इंजीनियर हो, बहुत बड़े बड़े व्यवसायी हो, पर तुम आत्मा नहीं जानते, क्योंकि तुमने आत्मा को जो जानने का साधन था, आत्मा ही आत्मा को जानने का साधन था, और आपने आत्मा को कहाँ देखा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं त्यागी हूँ, तो आप अपने अपने हाथों से अपना अपमान करा ली। कहाँ गणधर देव कहते हैं कि मेरा बूंद बराबर ज्ञान, और कहाँ सर्वज्ञ देव का समुद्र जैसा, सुमेर पर्वत जैसा ज्ञान। वो केवल ज्ञान के सामने अपने द्वादशांग के ज्ञान को बूंद बराबर देखते, और अपने पास कुछ अकल सकल नहीं है, कुछ याद रहता नहीं है, जरा सी चार लाइनें पढ़ ली, कुछ पंडित बन गए या कुछ इंजीनियर डॉक्टर बन गए। वो कहते इस ज्ञान से अपने ज्ञाय को नापता है, कहाँ ज्ञान समुद्र चैतन्य आनंद की मूर्ति सुख समुद्र, और कहाँ ये जड़ पराया ज्ञान। यहाँ पर की जो ज्ञान इस तरफ मुड़ा वो ज्ञान आत्मा से छूटा, उस ज्ञान से कभी शांति नहीं मिलेगी, आकुलता ही आकुलता, भारी भार। तो दो प्रकार की इंद्रियों से भेद विज्ञान करा चुके। द्रव्य इंद्रियों से कैसे कराया था, द्रव्य इंद्रिया मैं नहीं हूं, इनसे मेरा स्वरूप असत्ता नहीं है, इनसे मुझे ज्ञान नहीं होता, मुझे आंख से नहीं दिखता है, मुझे ज्ञान से दिखता है, मुझे कान से सुनाई नहीं पड़ता है, मैं जब सुनता हूँ जानता हूँ तब कान निमित्त होते। कल पढ़ाया था कि जो भाव इंद्रियां हैं इससे भी आत्मा नहीं दिखता, क्योंकि ये छिपसम गेय की प्रसिद्धि कर रहा, ये बहिर्मुख ज्ञान स्वभाव सन्मुख ज्ञान न होने से ये भी गौरव की वस्तु नहीं। आप अपना बड़प्पन छिपसम ज्ञान जगत के ज्ञान से नहीं माना करो, ये आत्मा का अपमान कहलाता। कल ये बताया था, थोड़ा सा छिपसम हो बहुत हो पर वो आत्मा ही नहीं है, ये तो गे, वो भावेंद्री जिसे हम ज्ञान मान रहे थे भगवान ने उसे गे के काले में खड़ा किया, क्योंकि जो छूट जाता है वो जीव का स्वभाव नहीं होता, जो सदा काल बना रहता है वो है जीव का त्रैकालिक स्वभाव और एक सा स्वभाव होता। और हमने ही माना हम मूर्ख हैं, हमें बहुत याद रहता है, हम पंडित हैं, हम ज्ञानी हैं, हम धर्मात्मा हैं। आचार्य देव कहते तू स्वभाव से ही ज्ञानी है, तू ज्ञानी बनना बन मत, बना बनाए जो आत्मा ज्ञान स्वभावी है उस तरफ से अपने को देख तो आपके कष्ट मिट जाएंगे। नहीं तो अपन ये देखते रहते ना कि कुछ याद नहीं होता, कितने बड़े बड़े ग्रंथ है करुणान युग के समय सार आदि के, हमें तो कुछ याद नहीं रहता। कि याद ग्रंथ नहीं करना है, ग्रंथ में लिखा है कि तू ज्ञान स्वभावी, इतना याद तो रह सकता है कि मैं जान रहा हूं। कितना याद करना है, कि जो जानता है उसे जीव कहती है। बहुत कठिन है बाबू जी की सरल। और अपन तो कितना बड़ा सोच बैठे थे कि हमें कुछ अकल नहीं है या हम ज्यादा ही समझ बैठे हैं, हमसे बड़ा तो कोई पंडित ही नहीं। वे कह रहे एक छिषम ज्ञान बूंद बराबर नहीं है, ज्ञायक तो बहुत बड़ी विभूति। ऐसा उसका रस टूटे जयती, उसका रस टूटे तो ज्ञायक मुख हो। अभी तो जीव वहां खड़ा हो गया है, कहाँ खड़ा हो गया है, छिषम ज्ञान में अपनी सत्ता काई से नापने लगा है, हम भी कुछ है। तो इससे इस अकड़ से उसे आत्मा दिखना दूर हो, कैसा लगता आना चाहिए, कुछ नहीं जानता, इच्छे समय क्या दम। और स्वभाव से भगवान हो, इसमें कोई कटौती नहीं, समझौता नहीं, ये तो प्रकृति प्रदत्त तत्व। तो ऐसा कल भावेंद्र से भेद विज्ञान कराया था कि अपना ज्ञान और इन इंद्रियों के माध्यम से जगत को जानने निकलता है तो खंड खंड हो जाता, उसकी अखंडता नहीं रहती कायम। क्योंकि यहाँ आंख से देखेगा तो वर्ण देख के आएगा, शक्ति है सर्वज्ञ स्वभावी और देख के क्या है वर्ण भर, इच्छा है सबको जानने की और जानना एक साथ सब इंद्रियों से हो नहीं सकता। तो निरंतर छिषम ज्ञानी भावेंद्री का स्वामी आकुलित रहता है, जब देखो तब उसे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होती। दूसरा पता कैसे चलता है कि छिषम ज्ञान से हम जी रहे हैं, कि उस ज्ञान में गैरलुब्धता बनी रहती बाबू जी, और जानो और जानो और जानो। और आत्मज्ञान में लाभ क्या है कि तृप्ति होती और जानने का रस टूट जाता है। ये सम्यक ज्ञान और छिषम ज्ञान की पहचान है बाहरी। छिषम ज्ञान कभी तृप्त नहीं होता, ये खोजते ही रहता है नए नए प्रमेय। ऐसा कहते और सुनाओ साहब, और सुनाओ साहब, तो क्या सुनाओ, छह द्रव्य होती कि और सुनाओ साहब, तो द्रव्य गुण पर्याय होती, और सुनाओ साहब चार भाव, तुम कितना भी पढ़ा दोगे तृप्ति नहीं होगी। और कितने में तृप्ति हो जाएगी, मैं वही हूं जो है भगवान, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। ये पढ़ेगा ज्ञान फीलिंग करेगा तो तृप्त होगा, क्योंकि आत्मा आनंदमयी है ना। तो सोपलब्धि प्रसिद्ध है, स्वानुभूत्या चकास से अपनी अनुभूति से उसे आनंद आता है। कलश टीका पहली, जगत को जानने पर जाननहार को ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं। फिर से बाबू जी, जगत के जानने पर, किसे जानने पर, जगत के जानने पर यानी षट द्रव्यमयी विश्व के जानने पर जीव को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। ज्ञान नहीं यानी सम्यक ज्ञान नहीं, सुख नहीं यानी अतीन्द्रिय सुख नहीं। और आत्मा को जानने पर, जाननहार को जानने पर ज्ञान भी है और सुख भी है। तो शिष्य ने पूछा कि जगत को जानने पर ज्ञान क्यों नहीं, क्योंकि गेयों में ज्ञान नहीं है इसलिए गेयों के जानने से ज्ञान, गेयों में सुख नहीं है इसलिए उन्हें जानने पर भी सुख नहीं। आप देखो कितनी टीवी देखते हो, वहां सुख नाम के कोई धर्म नहीं है तो थक जाता जी, फिर कहते बंद कर दो, आंखों में दर्द होने लगा, अब हम आराम करेंगे, क्योंकि इसमें सुख हो तब तो आए ना। टीवी में भोजन दिखता तो बाबू जी अपन निकाल ले उसमें से, काय को बनाए, तो उसमें है नहीं ना, इसमें कुछ भी तो नहीं है। ऐसा एक पेप्सी बनी थी, एक शीश, वो बंदर आया और उसने उसे पकड़ना चाहा तो उसमें कुछ था ही नहीं, जैसे ऐसे करता रहा, थक गया तो वापस हो गया। कुछ हो तब तो आए, परंतु ये समझाने वाले थक गए और अपनी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से मंत्र सिखाए कि ज्ञान और आनंद जीव का धर्म है, तो जीव में ही मिलेगा, इस जगत में कहीं नहीं मिलेगा। तो दो प्रकार की इंद्रिय जीती, कौन कौन सी, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रिय। कैसे जीती, द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय में कुछ नहीं किया, फिर क्या किया था, अपना आत्मा इनसे न्यारा है, इतनी कला सीखी, इंद्रियों में कुछ नहीं करना पड़ता और अपने में भी कुछ नहीं करना पड़ता, पर ज्ञेय एक संकर दोष का परिहार तो करना पड़ता है कि अपने माथे में अज्ञान में ये बात बैठ गई है कि पुस्तक है तो हमें इसका ज्ञान होता है, जब खोलते हैं तो समझ में आती है, कोई प्रवचन करता है तो समझ में आता है। भगवान ये कहते हैं कि तुझे समझ है इसलिए समझ में आता है, किसी के समझाने से किसी को समझ में आता है कि नहीं? समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिन वाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदिश्वर समझाया मारीचि बोराया, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। ऐसा यदि मानोगे ना तो मंदिर में जिम्मेदारी से बैठो। ऐसा नहीं सोचोगे ये समझाएंगे तब तो हमें समझ में, ऐसा नहीं। हम आप जागृत होके बैठे तो जिस दिन जागृति से बैठोगे, श्रोतार सावधानतया सुनवंतु, सावधानी से सुनोगे तो आपका ज्ञान ही आपको उत्तर देता रहे। समव शरण में जाते हैं तो भगवान अपन से बोलते नहीं ये, और वो जो भामंडल में सात भाव दिखते हैं तो वहां कोई सात भाव बने नहीं है, नहीं तो सारे लोग खड़े हैं तो सबके भाव मिक्स नहीं हो जाए, तो वहां कोई चित्र नहीं बना है, तो फिर अपन को सात भाव कैसे दिख जाते हैं? आपके ज्ञान में दिखते हैं आपको, तो आपके ज्ञान में आपके भाव दिखते हैं, यानी आपका ज्ञान इतना स्पष्ट होता है कि उसे समझ में आ जाता है कि अगली पर्याय अगली पर्याय। मैं ये समझ रहा था कि कोई चित्र बनता होगा तो अपन जाके देखे। भगवान के पास जाने पर ऐसा ज्ञान आपकी ताकत से अपने उपादान से खिलता है और आपको ही अपने उत्तर मिलते। आप कभी सोचना कि बड़े पुरुषों के पास बहुत सोच के जाओ पर वहां प्रश्न नहीं ले जाते, एकदम शांति से बैठने का मन होता है। अब कुछ नहीं पूछना, तो अब क्या हो गया, अभी तो घर में बहुत तैयारी कर, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो सब लिख के ले जाते थे कि ये पूछेंगे ये पूछे, उसकी सूरत देख के सब भूल जाता। सब समस्याओं का समाधान ही तत्व ज्ञान। तो दो इंद्रियां जीती बाबू जी, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रिय। एक शब्द में क्या अर्थ है, ये मैं नहीं हूं, इनसे मेरी सत्ता नहीं है, ये मेरी शोभा नहीं है, ये घेय है और मैं ज्ञाता हूं, मैं सो हूं और ये पर है। इनसे अपना सम्मान माना था या अपन इनकी स्तुति करते थे आज तक, गुरुदेव ने कितना खोला कि आज तक ये राग की स्तुति करता था, इंद्रियों की स्तुति करता था, भैया आंखें हैं तो भगवान दिखते, ऐसा कभी नहीं कहता कि आत्मा का विशुद्ध परिणाम है यानी ज्ञान है इसलिए भगवान के दर्शन। आत्मा को ढांकता रहता है। अब आज तीसरी इंद्री, तीसरी आंख खोलना। तीसरी आंख कौन सी है, ग्रह, इसमें हमारे इसमें तो पेजड़ है, ग्रह ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण मिला, ग्रह ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन यानी अनुभव के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते हैं, ऐसे भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादी पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो ये हुआ इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना। ये पुस्तक क्या है, पुस्तक कहते ना इसे माइक, इसे माइक कहते, ये कपड़ा है, टेबल मंदिर है, पुस्तक, ये सब अपने सब बोलते। इसे तीसरे बोल में लिखा ये सब इंद्रियां, तीसरा बोल क्या निकल रहा है कि ये सब इंद्रियां है, तो इंद्रियों क्यों कहते, इसे टेबल को टेबल कहो, कि तुम ये बताओ इंद्रियां किस काम में लेते हो तुम, कि देखने जानने के काम में लेते, तो तुम इससे जानने का काम करवा रहे, इससे जानने का काम करा रहे, इससे जानने का काम जगत भगवान, भगवान की वाणी से अपन को ज्ञान होगा कि नहीं, मत क्यों नहीं होगा, भगवान की वाणी से भी नहीं होगा, विदेशी नहीं चलना, किसद मार गए विदेश क्षेत्र से भी ज्ञान नहीं होगा, भगवान सीमंदर प्रभु की वाणी से भी ज्ञान नहीं होगा। ऐसी गाथा है बाबू जी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ये विश्व में ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था है, क्योंकि जिसमें जो शक्ति होती है उसकी अभिव्यक्ति भी वहीं से होती है। ऐसा नहीं होता है कि दूध में शक्कर डाली नहीं जाए और सोने की चम्मच हिलाए तो शायद मीठा हो जाए। वो शक्कर डालना ही पड़ेगा तभी मीठा होगा। क्यों होगा मीठा शक्कर डालने पर? शक्कर मीठी है तो आत्मा से ज्ञान क्यों होगा? क्योंकि आत्मा में ज्ञान है। और घी से ज्ञान क्यों नहीं होगा? घी में ज्ञान नहीं तो भगवान से ज्ञान क्यों नहीं होगा? विवेक के पाप है, भगवान में ज्ञान नहीं तो फिर उनसे ज्ञान होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कितना स्वाधीनता का जीवन सिखाती है धर्म। जैन साइंस में है ये बात है। जगत तो मूर्ख बनाता, भगवान को भी भगवान से बनता। भगवान कहते हमारे पास आओ, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, और ये चापलूसी में जाता, अपने मतलब से जाता कि हमारा ये काम बने। और हमारे भगवान साफ साफ कहते हैं कि हमारे द्वारा तेरा कोई काम बनने वाला नहीं। पहले आते इसे समझ लेना, नहीं तो बेकार करना रियल हो जाएगा तेरा। कुछ भी हम देने वाले नहीं है, यदि हमने दिया तो तुम भिखारी बन जाओगे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ऐसा धर्म हमारा नहीं कि हमारे भगवान दाता और सारे जगत के जीव भिखारी। हमारे भगवान भी भगवान और सब जीव भगवान। ये कहां सुनने मिलता भाऊ जी? अभी स्वामी जी कह रहे थे बहुत तीव्र पुण्य हो तो कान में पड़ेगा। सच बात है बिल्कुल। आप आज देखने में आता कि अपने साथ के साधर्मियों को अपन लाए यहाँ बैठा लें कि चलो भाई पार्लियामेंट है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छी भगवान है, बहुत गजब की व्याख्या चलती है, गुरुदेव की गर्जना होती है, ऐसा कह के लाओ, उनका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बहुत पुण्य चाहिए कान में पड़ने के लिए, बहुत तीव्र पुण्य चाहिए। कौन सा पुण्य चाहिए बाबू जी? ये महल अटारी मिल जाना तो ये निरतिशय पुण्य, चक्रवर्ती की संपदा मिल जाना ये निरतिशय पुण्य है, और भगवान की वाणी, भगवान की मुद्रा, साधर्मी का मिलना, ये बुद्धि का सही होना, ये सातिशय पुण्य। और ये पुण्य नहीं है उन जीवों के भाग में, इसलिए बेचारे यहां आ नहीं सकते। आएंगे तो चक्कर आ जाएगा, उन्हें उल्टी हो जाएगी, नींद आ जाएगी, मन नहीं लगे, और कहेंगे हम कल से नहीं आ सकते। बहुत पुण्य चाहिए। आप बताओ ना, उनसे कहो आप कि भाई तुम भगवान हो, स्वभाव से ही भगवान, कभी सा भी मजाक मत करो यार। ऐसा कभी नहीं सुना हो तो एकदम से ऐसा कहे ज्यादा मजाक नहीं करो, हम गरीब आदमी हैं, परेशान हैं, हम मंदिर में आने के लायक थे, आप कहते भगवान हो तो कैसे सुनेगा? कायर व्यक्ति घोर संसार में अभी दुख पाने वाला कोई नहीं आ सकता यहाँ बात। इसका अर्थ है आप और हम आए हैं, यानी बहुत भाग्यशाली, बहुत तीव्र पुण्य का उदय अपना फट पड़ा है। और तीसरा, आपकी और हमारी आसन्न भव्यता है कि ज्यादा काल नहीं है अपना परिभ्रमण का, इसलिए तत्व की बात में मन लगता है। ये सबके नहीं लगते, बहुत कठिन और बातों में लग सकता है। पूजा करवा लो, अभिषेक करवा लो, उनसे व्रत उपवास करा लो, घर छोड़वा दो, ब्रह्मचर्य दे दो, घर छोड़ दे, मुनि बन जाए, ये तो सरल है, पर आत्मा जानने के लिए मन मना ले, बहुत कठिन। तो तीसरे नंबर के बोल में ये बताया कि एक ग्राह्य पदार्थ है और एक ग्राहक पदार्थ। ग्राह्य कहलाता है ग्रहण करने योग्य, और ग्राहक कहलाता है उसे स्वीकार करने वाला। तो ग्राह यानी जानने योग और ग्राहक यानी जानने वाला। तो कौन है जानने योग और कौन है जानने वाला? तो ग्राहक हुआ आत्मा, जानने वाला एक ही द्रव्य जगत में जिसे जानने का धर्म, ये जानन हार। और जगत के पदार्थ क्या है? जानने में आने योग है। तो ग्राह ग्राहक लक्षण संबंध की निकटता। अब वो कहते हैं जब भी दर्पण के सामने, बाबू जी ये पुस्तक हम ऐसी वाली रखते हैं दर्पण के सामने, यही दर्पण है और ये सब पेन रखते हैं। तो ये दर्पण के सामने हम ये सब पेन लाते हैं तो पेन झलकता है, हैं? आग लाते हैं, बर्फ लाते हैं, कुछ भी सामने जो सामग्री हुई वो इसमें दिखेगी, दिखेगी ना? क्यों दिखेगी इसमें? क्योंकि इसका सुपर प्रकाश है, स्वभाव इसमें दिखता है। तो इस द्रव्य का इसमें कितना योगदान है? जो सामने वाला द्रव्य, इसका इसमें कितना योगदान? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। इसका परिणमन पूरा, इसकी एक एक पर्याय द्रव्य की इसमें से निकलती और इसी में समाती। समुद्र की लहर कहाँ से निकलती है? समुद्र से, और समुद्र में ही समाती। तो अपना ज्ञान कहाँ से आता है? अपने में से। और कहाँ जाता है? अपने में जाता है। अच्छा, अब बताना बाबू जी, आप इसमें एक काला चद्दर लाए अपन और इसमें काला दर्पण जो हो गया है इसे सफेद बनाने के लिए क्या करना है? काला नहीं हुआ इसने दूसरा उदाहरण दे रहे, दर्पण रखा है और ऊपर पंखा चल रहा और इसमें पंखा चल रहा दिखेगा, दिखेगा ना? तो इस पंखे को बंद करने के लिए क्या करना है? है? पंखा चल रहा ना बाबू जी ऊपर और इसमें दिखेगा। अब इसका पंखा, बाबू जी आप बताना, इसका पंखा बंद करने के लिए हमें क्या करना है? पहले ये बंद करें, फिर इसमें बंद हो जाएगा। यही समझाती जिनवाणी, तीसरा बोल इस जाति का, कि अपन को ऐसा लगता है कि इसमें पंखा चल रहा है जबकि इसमें क्या चल रहा है? प्रकाशन का धर्म चल रहा है, परिणमन इसमें इस काय का हो रहा है, दर्पण में दर्पण ही का धर्म प्रकाशित हो रहा है ना, इसमें आई नहीं पंखा। तो इसके पंखे को बंद करने के लिए क्या करना माता जी? बटन बंद करना है कि नहीं? नहीं करना। ये कला समझ में आ जाए तो अपना सिर दर्द दूर हो जाए। क्या है इसमें? कुछ हुआ ही नहीं है तो कुछ करना भी नहीं है, था ही नहीं इसमें पंखा, कहाँ था? और इस पंखे को बंद करना है कि नहीं? तो उत्तर ये आना चाहिए कि है नहीं तो बंद कहाँ से करना? तब तो आपको दर्पण दर्पण दिखता है और पंखा पंखा दिखता है। और यदि आपको बंद करना दिखा तो आपको अभी न दर्पण समझ में आ रहा है न पंखा समझ में आ रहा है, क्योंकि पंखा तो बिल्कुल अलग है और दर्पण अलग है। अब अपने ज्ञान में लगाओ, कितने बजे भोजन करते भाई साहब? अब नहीं बोल सकते, समझदार है ना? तो ये कहते ये सब दिन भर बनेगा, ग्राह पदार्थ दिखेंगे, ये कोई आंख अंधी नहीं हो जाएगी कि बंद कर ले कि न झलके। वो जगत में जो भी वस्तुएं हैं दर्पण के सामने आने पर और वो झलकेंगी। निकटता लिखा है इसमें कि जितनी निकटता रहती ना तो वो पदार्थ उसमें झलकता है। तो अब ये जीव को निकटता क्यों लिखी? कि तुझे दिन भर जो सामने वस्तु आती है और उस संबंधी ज्ञान होता है, उस संबंधी ज्ञान होता है अपने से, और वो निकट देखकर लगता है इससे हुआ। तो अपन यानी निकट देख करके ऐसा लगा कि इससे हुआ, तो गलती क्या हो गई? वो सुधार लें अपन। निकट है ना कोई भी वस्तु सामने दर्पण के, ऐसे चैतन्य दर्पण के सामने थे, कोई वस्तु है तो वो दिखेगी, तो दिखेगी और अपन ने माना कि भगवान के दर्शन अच्छे हुए, तो इसमें गलती क्या हो गई? भाई ये ख्याल में आ रहा है? ये वो कह रहे हैं कि ये संकर दोष है, बहुत बड़ा पाप, दिन भर के पाप है, पूरे 24 घंटा ही जीव के ज्ञान में ये सब चलता रहता। उसे यही समझ में नहीं आता कि ये जो दिखता है तो देखने का स्वभाव इसलिए दिखता है, अब वो मानता क्या है कि ये है इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, इससे आत्मा का स्वभाव का घात होता। किसी व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए आपको दान में लिखवाए और आपने घोषणा की 1,000 रुपए दान, तो उसे अपमान लगता है कि भाई 1,000 क्यों घोषित कर। और ये देखना ज्ञान हो रहा पूरा 100% ज्ञायक से और मान रहा है घी से, तो आत्मा का अपमान करने का पाप नहीं लगता, ये पाप नहीं लगता। कौन सा पाप लगता? अब तो पाप ही नहीं लगते, सब परमात्मा। तो ये ग्राहक ग्राहक लक्षण वाले संबंध है, यानी निमित्त निमित्त संबंध कहो, गेय ग्राहक संबंध कहो, ये बनता है। परंतु इसकी निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसे हुई दिखाई देती, अब वो ज्ञान में ऐसी फीलिंग होती है कि शक्कर खाओ तो शक्कर जैसा महसूस होता, मिर्ची खाते तो आपको ऐसा ज्ञान होता है कि चरपड़ी, बिल्कुल ऐसा जीव को लगता है जैसा सामने वाला पदार्थ। और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं है, परस्पर एक जैसे वे दिखाई देते हैं। ऐसी भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि, यानी 5 इंद्रियां उसको निमित्त बनाया और 5 इंद्रियों के विषय देखती, और जगत में है क्या स्पर्श रस गंध वर्ण, यही तो दिखाई देते ना, 5 इंद्रियों के माध्यम से विषय बनते हैं। तो विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य की शक्ति जो है वह स्वयं अनुभव में आने वाली असंग है, यानी जो चैतन्य भीतर विराजमान है वह किसी भी अन्य पदार्थ का संग करके नहीं जानता है, वो असंग स्वभावी है, उसमें कभी भी कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, यानी दर्पण के तरह निर्विकारी निरपेक्ष स्वतंत्र स्वावलंबी है स्वपर प्रकाश सकात। तो असंग स्वभावी है कौन? चैतन्य स्वभाव। असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। यानी जब अपने चित्त में ये बात आती है ऐसा मेरा स्वभाव, ये कोई करा नहीं रहा, मैं अपने बल से जान रहा हूं, तो ऐसा निर्णय लेने से उसकी रुचि आत्मा की होती, और ऐसा न जानने से कितना अच्छा, इनका प्रवचन तो बहुत जोरदार, अब तो हम यही पुस्तक पढ़ेंगे, अब तो यही करेंगे, अब तो वो टीवी देखेंगे, अब तो एक्टरों के पास जाएंगे, अब वो खाएंगे, अब वो घूमेंगे। जो भी आत्मा न जानेगा वो गैरलुब्ध बनता हुआ भागता फिरे, बहुत बुरा पाप है आत्मा न जानना, विश्व का सबसे बड़ा पाप। क्योंकि आपको पता कैसे चलता है कि आत्मा नहीं जानता, कि वो आकर्षण कहाँ रहता, उसका गे की तरफ रहता, ये गे लुब्धता तभी होती जब ज्ञाय का परिचय नहीं, लड़की की सगाई हो गई फिर उसको उस तरफ बाहर देखने घूमने का मन ही नहीं रहता, निश्चित हो गया ना एक घर। एक उदाहरण देते बिल्कुल सरल, फिर इसके बाद एक भजन सुनाएंगे स्वामी। एक किसान ने एक दर्पण खरीदा और वो दर्पण पहली बार देखा तो उसे चेहरा दिखा और उसका चेहरा था अपने पिताजी जैसा, तो उसे इतनी खुशी हुई ऐसा लगा जैसे हमें पिताजी मिल गए। तो पिताजी मिलने की खुशी इतनी हुई कि बोली गजब का, ये आपने तो हमारे पिताजी के दर्शन करा दिए, ये क्या है? कि भाई दर्पण है तो इसमें पिताजी कैसे आ गए? कि पिताजी नहीं है, तुम्हारी सूरत पिताजी जैसी, और ये तुम्हें चेहरा दिख रहा है, और ऐसा श्रद्धान से दर्पण को लाया और उसे दिन भर ये खुशी रहती थी कि हम पिताजी के पास पहुंच गए, पिताजी के दर्शन होने लगे। तो वो अपनी अटैची में रखकर और घर में पहली बार खरीदा दर्पण, तो 3 बार 4 बार जाता कोठे में, अटैची खोलता और दर्पण को निकालता और पिताजी के चेहरे को देखता और प्रसन्न होकर लौटता, और इतनी खुशी रहने लगी कि पत्नी पुत्र से बातें करना बंद हो गई। तो पत्नी बहुत दुखी हुई कि ये कितने 15 दिन से हमसे बात नहीं कर रहे, कि क्या कारण, क्यों उपेक्षा कर। तो उन्होंने देखा कि वो चुपचाप जाते थे कमरे में, अटैची खोलते थे, कुछ निकालते थे, और देखते थे और प्रसन्न होके निकलते थे। तो वो भी गई, जब वो कहीं गए तो देखे निकाल के कि अरे ये किसी दूसरी से प्रेम करने लगे, तो उसे बहुत दुख हुआ। अब वो भोजन पानी उसका सब घटने लगा, क्यों उसे तकलीफ हो गई ना कि अब ये कहीं और जाते उसे देख देख के खुश होती, इसलिए हमसे बात नहीं करते। तो अब मम्मी ने पूछा, बेटा तुम इतनी दुबली होती जा रही हो, क्या कारण है? कि मम्मी ये बातें कहने की नहीं है जो गड़बड़ी चल रही, तो हमसे तो बताओ, हम तो तुम्हारी माँ है ना, तुम तो हमारी बेटी के बराबर, कि इनको किसी दूसरी लड़की से प्रेम हो गया। कि कौन लड़की है, चलो आप हमको बता, हम आपको बता। तो मम्मी ने देखा, अरे बूढ़ी लड़की से प्रेम हुआ, इसे तो सफेद सफेद बाल है इसके। तो अब उसे ये तीन जनों को तकलीफ बढ़ गई है, और उसका जड़ देखी आचार्य ने कि अज्ञान है, ये जानते नहीं है कि दर्पण दर्पण है और व्यक्ति व्यक्ति है, अलग अलग संकर दोष नहीं चला, तब से ही आकुलता आ गई। और उसने सिखा दिया था बेचने वाले ने कि ये आप समझ लेना, इसमें पिताजी नहीं है, तुम्हारा चेहरा इसमें झलक रहा है, वो पिताजी जैसा। फिर उसने दर्पण रखा सबके सामने और तीनों खड़े हुए, तो पहले एक एक दिखती थी, अब तीनों दिखी, प्रमाण का ज्ञान हो गया। तो उस सबके भ्रम टूट गए कि अरे अरे इसमें कोई लड़की नहीं है, ये मम्मी है, ये बहू है, और ये ऐसे ही बताओ अपने अज्ञान में क्या कहा, दो दो हजार के नोट है कि नहीं, सोचो जरा क्या है, महल है कि नहीं, पत्नी है कि नहीं, पुत्र है कि नहीं, ज्ञान में कौन बाबू जी, सिर्फ ज्ञान। और इस जीव को ये ज्ञान में ज्ञान दिखने लगना, ये सर्वोत्कृष्ट पहली स्थिति है, जिसके लिए इतनी सुंदर गाथा अपन ने पढ़ी कि जब जीव इन तीन इंद्रियों से भिन्न अपने आत्मा को देखता है तब उसे आदर आने लगता है, स्तुति करता है, ऐसा सुंदर ज्ञान मुझसे होता है, मेरा ज्ञान, मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा तीन इंद्रियां गेह पर है, जानने में आती हैं, और इनसे न्यारा कौन है, जाननहार है, ये सो है, ये अपना है, ये आनंदमयी है, जैसे हिरण की नाभि से कस्तूरी सुगंध आती है पर पता नहीं है तो भागता दौड़ता। अरे अपने विष्णु कुमार मुनिराज को पता नहीं था तो कितना, मतलब उनको ही नहीं मालूम कि हमें रिद्धि हो गई। और जब वो छुल्लक जी आए, उन्होंने कहा कि 700 मुनिराजों के संग पड़ा है और आपको रक्षा करना, तब उन्होंने हाथ फैला के देखा कि इतनी ताकत, इतना बड़ा हाथ हो गया, और फिर जाकर के रक्षक। ऐसे इस जीव को अपने बारे में नहीं पता है कि मैं कितनी सामर्थ्य रखता। तो अभी अपन को प्रति समय क्या दिखने लगना चाहिए इस गाथा को पढ़ के, कि जीव दिखे और ज्ञान दिखना चाहिए, दिखेगा माई और दिख जाना चाहिए ज्ञाय, दिखेगी पुस्तक और दिख जाना चाहिए ज्ञाय। क्यों दिख जाना चाहिए ज्ञाय, कि पुस्तक ज्ञायक में ज्ञान में आई नहीं है, तो ज्ञान में कौन आया, कि ज्ञान ही ज्ञान रहा, तो तुम्हें ज्ञान दिखता है कि पुस्तक दिखती है, ऐसा अंतर आ जाएगा। एक गुरुदेव का भजन है, धन्य दिगंबर धर्म गुरु को भागया, समय सारे अशरीरी ग्रंथि जगा गया, धन्य दिगंबर धर्म गुरु को भाग गया, समय सारे अशरीरी ग्रंथि जगा गया, पद सम्मान प्रतिष्ठा पूजा गुरुवर तुमने सब ठुकराया, सत्य सनातन शाश्वत पथ पा गुरुवर बोले सब कुछ पाया, देख तुम्हारी अटल साधना दुनिया ने आक्रोश दिखाया, कोई बोले सिंहासन लो यादो जान समझ में आया, आत्मधर्म का गौरव तुमको भाग गया, समय सार अशरीरी ग्रंथ सुखा गया। हे युग पुरुष अमर सेनानी, तुमने जग को नई दिशा दी। पामरता के कट्टर द्रोही बोले सब हैं सिद्ध स्वरूपी। एक समय की राग परिणति चिदानंद में नहीं समाती। जैसे जल में तिल तैरता ऊपर ऊपर ही रह जाती। चांद सोजल निर्मल वैभव भा गया। समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया। पल पल देते कठिन परीक्षा, आत्मधर्मी को कभी न छोड़ा। बनी बहुत प्रतिकूल परिस्थिति, गेय बना कर उनको छोड़ा। हे गुरुदेव आपने आकर तीर्थंकर का विरह भुलाया। देख तुम्हारी सहज साधना, भूतल पर भूचाल समाया। सीमंदर संदेश याद सब आ गया। समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया। संप्रदाय सहधर्मी बोले, कुल परंपरा धर्म न छोड़ो। जन्मे हो जिस मत में गुरुवर, उस पथ से अब मुख मत मोड़ो। दिग दिगंत में कीर्ति लताए, व्याप रही गुरुदेव तुम्हारी। हीरे मोती से तोलूं क्या, लेकिन रखो लाज हमारी। मत परिवर्तन का निश्चय क्यों आ गया। समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया। गुरुवर बोले धर्म न पलता, शिशु जननी के अंचल मेरे। और पिता की देखा देखी, धर्म नहीं चलता है पगली। जान जग की जरा अपेक्षा, धर्म चक्र चलता निज बल पर। ज्ञान चेतना के अंचल में धर्म निरंतर पलता जीवर। लक्ष्य पूर्णता का ही मन में छा गया। समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया। धन्य दिगंबर धर्म गुरु को भा गया। समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया। समय सार अशरीरी ग्रंथ जगा गया।
अशरीरी सिद्ध संप्राप्त लोकागे विराजमान चौबीस नुष्पादी माय परम चौबीस जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। चार घाती कर्म नो क्षय करी अर्यन पद ने प्राप्त विद्य क्षेत्र में विद्यमान श्रीमंदरादि अजित वीर पर्यत विश्व जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। अद्य दिन मंदिर में विराजमान હડક દાનના તારક અખંડ સાધના પ્રતિક શ્રી બાહુબલી મુનિન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. દિવ્યધનીના સારભૂત નિત્યબોધક પરમાગમ સમયસાર પ્રવચન સાર આદિ સમસ્ત જીનવાણી માતનો જય હો. ભારત ક્ષેત્રના ભવ્ય ભક્તને જીનવાણી માતના ભેટના કરાવનાર ભગવાન શ્રી કુંદકુંદ આચાર્ય દેવનો જય હો. આમ ભક્તો પર નિરંતર કરુણાનો ધોધ વસવનાર અનંત આનંદ ઉપકારી શ્રી કહાન ગુરુ દેવનો જય હો. સ્વાનુભૂતિ માર્ગ પ્રકાશક પ્રસન્નમૂર્તિ ધન્યવતાર પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. અમૂલ્ય તત્વના વિચારક આત્મસિદ્ધિના પ્રદાતા પરમ કૃપાળુ દેવનો જય હો. શાશ્વત પર્વ અષ્ટાનિકા પર્વનો જય હો. શ્રી પરમ વિતરાક સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. હે જીનવાણી ભારતી તો હે જપો દિન રૈન જો તેરા સરળા ગ્રહે સો પાવે સુખ ચૈન જાવાણી કે જ્ઞાન કે સોજે લોકાલોક સોવાણી મસ્તક નમું સાદે તો હું તો બોલો જીનવાણી માતનો જય હો.